नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक की गहराइयों में उतर रहे हैं, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित है और ये उस महत्वपूर्ण क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है जो 1988 से 1990 के बीच लिखी गई थी।
जी हाँ, और इस पुस्तक माला के लिए तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा था वंदनीय माता जी से 1990 में कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा, और उन्होंने आग्रह किया था कि उनके इस ज्ञान शरीर को, मतलब इस साहित्य को, जन जन तक पहुंचाया जाए।
बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही है कि पूज्य गुरुदेव के इसी ज्ञान शरीर से कुछ अनमोल सूत्र समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक का सार क्या है, मतलब मूल बात क्या है?
देखिए, सार बहुत गहरा और सीधा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य न तो अपूर्ण है न अभागा, बिल्कुल नहीं। सारी की सारी क्षमताएं वो बीज रूप में हमारे अंदर ही मौजूद हैं, जरूरत बस उन्हें समझने की है और फिर इस्तेमाल करने की।
अच्छा,
उनका कहना है कि हम बाहरी दुनिया के प्रपंचों में, मतलब जो तामझाम है, उसमें उलझे रहते हैं, जबकि जरूरत है अपने भीतर झांकने की।
तो आप कह रहे हैं कि ये बाहरी दुनिया एक तरह से जैसे कोई सिनेमा का पर्दा हो और असली कहानी तो अंदर चल रही
हाँ,
है।
बिल्कुल यही। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत शक्तिशाली सूत्र है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। ये पूरी तरह हम पर है, चाहे तो गिरने के लिए खाई खोद लें या फिर उठने के लिए कोई मीनार, कोई सहारा चुन लें। इसमें मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद को दीनहीन बेचारा समझेंगे तो वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन अगर खुद को समर्थ समझ लिया, अपनी शक्ति पहचान ली, तो फिर मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं।
ये तो बहुत बहुत ही सशक्त विचार है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ईश्वर या विधाता को कहाँ खोजे अगर सब कुछ हम ही हैं तो।
हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर को जड़ चीजों में मत खोजो, चेतन में खोजो। और ईश्वर से मिलने की सबसे पास की जगह कौन सी है? हमारा अपना अंतःकरण, हमारी अपनी चेतना।
अपना अंतःकरण?
जी, प्रतिमाएं, मूर्तियां, ये सब प्रतीक हैं, महत्वपूर्ण हैं पर प्रतीक। असली जीती जागती चेतना तो हमारे भीतर ही है।
इसीलिए वो कहते हैं मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है।
कितना गहरा सूत्र है।
मनस्थिति ही जन्मदात्री है।
हाँ, मतलब जैसा हम सोचेंगे, महसूस करेंगे, वैसे ही हालात हमारे आसपास बनने लगेंगे।
ये तो सच में बहुत शक्तिशाली बात है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? बहुत मुश्किल लगता है ये।
पुस्तक में निकृष्टता से उभरे महानता अपनाए की बात भी है।
हाँ बिल्कुल है।
और पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिया, व्यवहारिक साधना पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि पहले अपने अंदर जो दोष दुर्गुण है ना, जैसे लोभ है, मोह है, अहंकार, वासना, तृष्णा, इनकी चट्टानों को हटाना होगा।
अच्छा, पहले सफाई करनी होगी।
बिल्कुल, और फिर व्यवहारिक धर्म धारणा अपनानी होगी।
हाँ,
जिसके लिए उन्होंने पांच गुण बताए हैं, पंचशील।
पंचशील? हाँ, ये मैंने सुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये?
जी, ये पांच गुण आज के युग की, समझिए, असली तपस्या है। पहला, श्रमशीलता, मतलब आलस्य को छोड़ना, मेहनत करना। दूसरा, मितव्ययिता, यानी फिजूल खर्ची रोकना, साधनों का सही उपयोग। तीसरा, शिष्टता, सबसे विनम्र व्यवहार रखना। चौथा, सुव्यवस्था, अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी चीजों का सही नियोजन, मैनेजमेंट। और पांचवा, सहकारिता, मिलजुल कर काम करना, सहयोग करना।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि ये पांच गुण साध लिए तो ये प्राचीन काल की बड़ी बड़ी तप साधनाओं के बराबर फल देते हैं आज के समय में।
ये तो हुए व्यवहारिक गुण, पर मन का क्या? मानसिकता के स्तर पर भी कुछ सूत्र हैं?
हाँ बिल्कुल, पंचशील के साथ उन्होंने चार मानसिक विशेषताएं भी बताई हैं। ये बहुत जरूरी हैं। पहली, समझदारी, मतलब दूर की सोचना, किसी काम के परिणाम को समझना। दूसरी, ईमानदारी, जो कहा वो किया, प्रामाणिकता।
जी।
तीसरी,
जिम्मेदारी,
अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य ठीक से निभाना। और चौथी, बहादुरी, अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ खड़े होने का साहस।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी।
हाँ, तो ये पांच पंचशील और ये चार मानसिक सूत्र, ये मिलकर बन जाते हैं नौ रत्न, नौ गुण। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यही इस युग की आवश्यक साधना है।
तो फिर ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, इनका क्या स्थान है इस पूरी साधना में?
पूज्य गुरुदेव ने प्रतीक पूजा का तत्वदर्शन समझाया है। वो कहते हैं कि ये निरर्थक नहीं है, पर इनका असली मतलब समझना जरूरी है। पूजा में जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब असल में अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करने के संकेत हैं, इशारे हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे जल चढ़ाने का मतलब है कि हमारे मन में शीतलता आए, शांति आए। दीपक जलाने का अर्थ है हम अपने अंदर और बाहर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। तो तर्मकांड करना ठीक है, पर उसके साथ भाव संवेदना का जुड़ना जरूरी है। सिर्फ लकीर पीटना नहीं, उसके पीछे की भावना को जीना है।
और ये जप, ध्यान, प्राणायाम, इनका क्या अर्थ है इस नजरिए से?
इनका भी गहरा अर्थ है। जप का मतलब है परमात्मा और अपने जीवन के लक्ष्य का निरंतर स्मरण रखना, उसे भूल ना जाना। ध्यान का अर्थ है कि हम जिस भी इष्ट का या लक्ष्य का ध्यान कर रहे हैं उसके गुणों को अपने अंदर उतारें। जैसे सूर्य का ध्यान करें तो उसकी ऊर्जा, उसके प्रकाश को महसूस करें, अपनाएं।
तद्रूप बनना।
हाँ, तद्रूप बनना। और प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति के द्वारा दिव्यता को, अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करना और जो अशुभ है, नकारात्मक है, उसे बाहर निकालना। तो इन क्रियाओं के पीछे की जो प्रेरणा है ना, उसे अपनाना मुख्य है।
आखिर में पूज्य गुरुदेव एक अनुपम सुयोग का लाभ उठाने की बात करते हैं, वो क्या है?
जी, वो है समय की पुकार को समझना, और वो पुकार है आत्म परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन।
आत्म परिष्कार, खुद को सुधारना, और सत्प्रवृत्ति संवर्धन।
हाँ, यानी समाज में अच्छी आदतों, अच्छे विचारों को बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने रास्ते भी बताए हैं।
बिल्कुल।
जैसे ज्ञान यज्ञ, मतलब विचार क्रांति में भाग लेना, शांति कुंज जैसे साधना केंद्रों से जुड़ना, और चल ज्ञान मंदिर यानी ज्ञान रथ जैसे माध्यमों से पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर, उनके साहित्य को फैलाना।
अच्छा।
1 से 5 लोगों तक, फिर 5 से 25 लोगों तक, इस तरह विवेक का, सही सोच का विस्तार करना ही आज का सबसे बड़ा योग धर्म है। यही वो अनुपम सुयोग है।
तो संक्षेप में कहें तो जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र हमें बाहरी कर्मकांडों या दिखावे से आगे बढ़कर अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का रास्ता दिखाती है। और ये जो व्यवहारिक सद्गुण है पंचशील, और वो 4 सूत्र यानी 9 रत्न, इन्हें अपनाने और अच्छी सोच को फैलाने का मार्ग बताती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये आत्म परिवर्तन की एक सीधी, स्पष्ट और व्यावहारिक विधि है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, जैसा पूज्य गुरुदेव कहते थे, नर से नारायण बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
और यहाँ एक बात सोचने के लिए रह जाती है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन 9 रत्नों को, इन व्यावहारिक गुणों को अपनी रोज की आदत कैसे बनाएं, जिससे ये सिर्फ पढ़ने सुनने का ज्ञान ना रह जाए बल्कि सच में हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाए। ये शायद असली चुनौती है।